کہ نہیں تیرے دل میں قرآن اور حدیثوں پر شک ہے تو وہ بھی بتا دے،
دیو جواب مافک،
دے جواب ذرا اپنی عقل کے مافک دے،
تب فتح محمد کا،
تب ہم نے کیا کہا،
ان میں نہ کچھ شک،
کہنے بابا میں آگے کہہ چکا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صورت اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، سوامی جی بالکل آخر الزمان امام دی ہیں، پر بات یہ ہے جب تک اورنگزیب نہیں مانے گا، نہیں سمجھے، اور ظاہر نہیں کرے گا، تب تک میں نے مان تو لیا پر میں ظاہر کر سکتا نہیں، اب جان محمد کیا کہتا سنیے،
ظاہر کر ہم نہ سکے،
ظاہر ہم نہیں کر سکتے،
سرا ظاہر پرست بجرگا،
کیونکہ شرع اتنی ظاہر پرست ہے، اورنگزیب گردن کاٹ ڈالے گا،
سو ہم کو مارا تو
وہ ہمیں مار ڈالے گا،
دن واسطے کو ہونا جائے،
اس وقت بھائی ہم ظاہر نہیں کر سکتے، حدیثوں کے معنی کھل گئے، قرآن کے معنی کھل گئے کہ پران ناجی ہی اللہ تعالیٰ ہیں،
اب تمہارا کیا بس آئے،
تب کہتے ہیں جان محمد پھر تیرے بس کی بات کا ہے، کا تو کرتا پھرتا ہے،
تب فتح محمد پھر کا،
تب فتح محمد نے پھر کیا کہا،
جو بادشاہ نہ آوے
بھائی جب تک اورنگزیب سوامی جی کے چرنوں میں نہیں آتا، نجاتن سمپردا میں نہیں آتا،
تو لو آگا ہم کیوں کریں،
ہم آگے ہو کے اس بات کو ظاہر نہیں کر سکتے،
پہلے کیوں لے آوے،
پہلے ہم کس طرح سے یقین لائیں،
تب جان محمد نے کہا،
تب جان محمد نے کیا کہا،
تمہارا ایمان اوپر سلطان،
کہ تیرا یقین اللہ پہ نہیں ہے، تیرا یقین تو ایک بندے انسان پر ہے، کیا اورنگزیب خدا سے بڑا ہے، تو ذرا عقل سے بات کر،
ایسا تم کیوں
کہو، ایسا کیوں کہتے ہو،
جب دیکھو حق پہچان،
جب تم نے حق کی پہچان کر لی، شنسے سارے مٹا لیے، پھر خدا پہ بھی وشواس کرنا چاہیے یا کسی اگوے مہاراج یا راجہ کے اوپر چلنا چاہیے،
ایک ہٹ پٹ بھئی
آپس میں کھٹ پٹی ہو گئی،
تب انہیں چھوڑ دیے پٹھان،
اب جان محمد نے قسم کھائی یہ پٹھان سارے کافر ہیں، اب ان کی شکل نہیں دیکھوں گا، یارو قرآن اور حدیثوں پر بھی جن کا یقین نہیں ہے وہی کافر، قرآن میں کہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی وانی پہ یقین نہیں ہے، وہ
تم منے کرو جان محمد،
تب فتح اللہ نے جا کے مسلمانوں کو کہا رے بابا مر جائیں گے سارے کے سارے، یہ جان محمد کو روکو ویراگی کے پاس نہ جائے،
اُت جاوے نہیں نیدان،
وہاں نہیں جائے،
مل پٹھانوں منے کیا،
اب فتح اللہ نے کہہ دیا سب سے بڑا وزیر تھا، تو سارے پٹھانوں نے مل کے رات کو جان محمد کے گھر گئے اور منع کیا،
جان محمد کو
سب نے مل کر کے،
تو کیوں ویراگی کے قدموں،
ارے بابا تو کیوں ویراگی کے قدموں میں جاتا، تیری عقل کو کیا ہو گیا،
دیکھیا جانیا مومن،
تم نے کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ مانا ہے،
لڑائی ہونے لگی
آپس میں، تو میں ہاتھا جپٹی ہونے لگی،
سنی سری جی صاحب جی نے بات،
اب اس بات کی سوچنا سوامی جی کو بھی پتا چل گئے، بھی مسلمان جان محمد سے لڑتے ہیں،
تب ارجا جان محمد کو،
تب دھیان دینا سوامی جی جان محمد کو کہتے ہیں کہ تیری روح پاک ہے اور وہ ناپاک وجود والے لوگ کیا جانے یہ کہاں کی باتیں، اس واسطے ان سے لڑو مت،
تم تو جن تم ضد کرنے جاتے،
ضد نہیں کرو، کیونکہ سنسار کے جیو تمہاری بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور وہ کرم کانڈ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے،
اے تو عمل دجال،
اے دجال کا ہی روپ ہے سارا جی، سارا سنسار جو ہے
سو تو جاہلوں کا باپ،
وہ جاہلوں کے باپ ہیں،
ان سے چھلے چھوٹ گئے،
ان سے چھل کر کے اپنا پنڈ چھڑاؤ،
تم جن جورا کرو آپ،
جورا ضد سے کچھ کام نہیں چاہ، اچھا یہ ٹھیک ہے مغرولا ہونا، پنڈ چھڑاؤ اور اپنی راہ پہ چلتے جاؤ،
تب جان محمد کا،
تب جان محمد سوامی جی کو کیا کہتا ہے،
موت جال لگا برجن،
سوامی جی اور میں نے تو کچھ کہا نہیں، وہ مجھے منع کرنے لگے کہ آپ کے چرنوں میں ماتا ہوں، اگر میں ان سے ڈروں مرنے کا ڈر ہے، نہ ڈروں تو، اور آؤں تو تمہارے قدم چھوٹتے ہیں،
میں تن کا کہا کیوں کروں،
اس لیے میں ان کا کہا کس طرح سے مان سکتا ہوں، مر جاؤں گا آپ کے چرن اب نہیں چھوڑوں گا،
ایمان خطرہ ہوئے
میرے ایمان میں خطرہ ہوتا ہے،
میں تو شاید دیکھیا،
میں تو
بشری
ہم صاحب کہتے، اور وہ مسلمانوں کو تعلیم دینے والا ہے. میں نے صاحب کی پہچان کر لی. آپ ہی آخری زمانے کے صاحب ہیں. آپ کے ہی ہاتھوں سے 14 لوگ کو جو ہے اکھنڈ بہشتیں ملنی ہیں.
یار اپنے نینوں
اپنے نینوں سے جب دیکھ لیا ظاہری آنکھوں سے
تا خطرہ ہوتا ہے.
اب اس میں یہ مسلمان بے ایمانی میرے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. خطرہ ہوتا ہے میرے ایمان میں.
اے مقتے کہے کیوں نہ بہن.
اب میں کیسے ان باتوں کو سویکار کر سکتا ہوں.
پٹھانوں پریان کیا.
اب جب پھر وہ چلا گیا تو پٹھانوں نے صلاح کیا, یار اکیلا ہے, جب رات کو گھر پہ آگے سوئے گا اس کے گھر چھلانگ لگا کے سوتی کی گردن کاٹ دو.
جان محمد ڈارے مار,
جان محمد کو مار ڈالیں.
ان ہمارے دین میں
اس نے ہمارے دین کا جو ہے ستیاناش کر دیا. قرآن دیتا تھا پڑھاتا تھا, استاد ہی بے ایمان ہو گیا,
چھوڑ دیا ویوہار,
ویوہار ہی چھوڑ دیا, یقین چھوڑ دیا.
پہلے تو ویراگی سے,
پہلے تو چلو آج رات کو ویراگی سے لڑنے چلیں کہ ہندو ویراگی ہو کے قرآن حدیث پڑھنے کی اس کو اجازت کس نے دے رکھی ہے.
کرے لڑائی.
فیصلہ تو کیا 100-200 نے, اور جاتے کتنے کہنا آسان ہوتا ہے. سوامی جی بیٹھے چرچا کر رہے تھے, پہلے تو ویراگی سے چل کے ہم پوچھیں,
کرے لڑائی جور,
ان سے لڑائی کریں,
آپس میں سب مل کے,
آپس میں سب مل کے
کرنے لگے شور,
اور آئے اور آ کے بڑا شور شرابا کرنے لگے. جیسے چرچا ادھر ہو رہی, پیچھے سے کوئی آ جائے تو جو چرچا سننے بیٹھے وہ تو نہیں دیکھ سکتے, تو کہتے اے ویراگی جی مہاراج تمہیں پتا ہے اورنگزیب اور شریعت کا راج ہے, تم ہندو ویراگی ہو کر قرآن پڑھتے ہو, حدیث پڑھتے ہو, یہ شرح آپ کو روا روا میں نے اجازت نہیں دے سکتی.
سب رات کو مل کے,
سب رات کو مل کے
آئے جنے 10-12.
کتنے آئے؟ صرف 10-12 جنے آئے.
شری صاحب جی بیٹھے تھے,
اب سوامی جی تو بیٹھے تھے, چرچا ہو رہی تھی,
آگے حسینی بانکے
استوار, اور بائی چانس اس دن چرچا بھی کس کی ہو رہی تھی, تفسیر حسینی سے سوامی جی سمجھا رہے تھے.
ات بیٹھی مجلس,
اور سارے سندر ساتھ مجلس سبا بھر کے بیٹھی تھی,
بھر کے باوجود
دونوں طرف بیٹھے تھے,
مومنوں آگے کتابیں,
اور مومنوں کے آگے کتابیں قرآن کی, حدیثوں کی, وید شاست پرانوں کی سب رکھی تھی,
ریلوں پر دھری سوئے,
ریلوں پر پدرائی ہوئی تھی,
دو باجو دیوی پیتل کی.
اب اس سمے بجلیاں تو نہیں ہوتی تھی, بڑے بڑے پیتل کے, چھوٹے نہیں بڑے دیپک, اور بہت ہی موٹی بتیاں, ایک ادھر کو لائٹ ایک ادھر کو لائٹ, تاکہ سب گرنتھوں پر روشنی جائے.
ہے بڑی جوت روشن,
بڑی جوت روشن, بڑی لائٹ تھی, لائٹ میں کمی نہیں تھی.
چرچا آپس میں کریں,
اب چرچا آپس میں ہندو مسلمانوں کے گرنتھوں کو ایک رس کر کے ایک اکشاتیت کی پہچان کرائی جا رہی تھی.
شری جی سنگ مومن,
شری جی سنگ سندر ساتھ مل کر کے
دیکھتے جال مجلس.
اب ایسی چرچا کو سن کر کے وہ جو 10-12 مسلمان دجال کے روپ میں آئے تھے,
کرنے لگا شور.
کیا شور کرنے لگا؟
اے بھگت جی کیا ہے؟
اے بھگت جی مہاراج کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم ہندو ہو اور تفسیر حسینی اور قرآن کے معنی کرتے ہو.
ہم کرے لڑائی جور,
ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں.
تم ٹیکا مالا پہنے تو,
تم ٹیکا ہر مالا پہن تو ہندو ہو,
اور کیوں پڑھت قرآن؟
اور قرآن کو پڑھنے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟
اے ربا نے ہے نہیں,
اے شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی.
جو تم کہو سنو کان,
کہ شریعت کے حساب سے نہ آپ قرآن کہہ سکتے ہو اور نہ آپ سن سکتے ہو.
تب شری جی
تب شری جی نے کیا کہا؟
ہم بھر جاتا تم,
کہ بھائی ہم کو تم کچھ کہتے, ہم تو محمد اور اللہ کی محبت کو باندھ کے سب میں ظاہر کرتے ہیں.
خدا اور رسول کی محبت,
خدا اور رسول کی محبت سنمند کو ظاہر کرتے ہیں,
عبادت آپس میں ہم,
اور ان کو تو ایک رس کرتے ہم باندھتے ہیں.
ان کو تم ڈھانپ دو,
اور اس خدا اور رسول کے پیغام کو تم ڈھانپنے آئے ہو.
اے تمہیں کن فرمائے؟
یہ بتاؤ یہ جان تمہیں دیا کس نے؟ تمہارا استاد کون ہے؟
تب جان محمد بولے,
اب استاد کون تھا؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگے سوامی جی پھر استاد تو میں ہی تھا ان کا, مجھے اجازت دو میں ان کو آج اور فارسی پڑھاتا ہوں.
تمہیں کنے بتائے؟
स्वामी जी कहते हैं तुम्हें किसने ये बताया कि जहाँ अल्लाह और मोहम्मद की चर्चा हो और उसको जो ढांपो और विरोध करो।
मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूं।
खड़ा हो गया जान मोहम्मद, कहने लगा यारो जमीन फिर गई, मैं तुम्हारा उस्ताद, तुमने मेरे से तालीम ली और आज तुम मुझे जो है पढ़ाने आ गए हो।
तुम लेते तालीम,
मेरे से तो तालीम लेते थे,
आप बातें करने लगे,
अब आए हो अहंकार में टके टके की बातें करने।
बड़े हो अजीम
और बड़े अपने को अजीम बड़े मुरब्बी समझते हैं कुरान के,
जो करते जोश महीन को।
अब महीन बैठा था, कहने लगे जान मोहम्मद ये आयतों से नहीं समझेंगे, इनका लाज मेरे पास है। लाठ लिया उठा, कहता देख ऐसा कलमा पढ़ाऊंगा अभी तुम दबा के भागेंगे।
जबराइल हुआ जोश,
एकदम इसको जोश आ गया,
आया जोश गाजी खान को।
गाजी खान भी बैठा हुआ था, उसने भी लाठ उठा ली,
दजाल डरा देख शोर।
अब जब देखा कि मुसलमानों ने लाठ उठा ली है भागो, और क्या करना था। कल गए भगत जी महाराज पढ़ो पढ़ो, हमारे दिल अब साफ हो गए हैं।
आया जोश अब्बल खान को,
अब्बल खान को भी जोश आ गया,
और जान मोहम्मद,
और जान मोहम्मद ने भी लाठ उठा ली।
यारो उठो जिमी फिरी,
हाथ हो गई यार जमीन ही फिर गई, हमारे चेले हमें पढ़ाने आए हैं,
इत उड़ गई सब हद,
हाथ ही उड़ गई है यहाँ।
ए भगत जी हम जाते,
ए मुसलमान कह रहे हे भगत जी महाराज पढ़ो 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 पढ़ो, कुरान बंद ना करो, हम जाते हैं,
हमको कीजिए माफ,
हमको कीजिए। ऐसों का इलाज चर्चा नहीं, समझ लग गई ना। हाँ यार लातों के नहीं बातों से माना करते, यार घुसे के नहीं इशारों को जाना करते।
हम तो अब जाते,
अब हम जाते हैं,
हमारे दिल हुए साफ,
हमारे दिल हुए, लाठी मिनटों में जो है दिल साफ करती है। स्वामी जी ने यह बात उदयपुर में भी कही थी, जाहिलों पर सोटा बरसेगा कादर के हुक्म से, तुम चिंता कहीं तुम ना लड़ने चले जाना। और राजी महाराज का ही सोटा इनके दिल साफ करेगा।
उठ भागे जो कह के,
यूं कह के वो चले गए,
जय सिपा में किया शोर।
अब कहां अपने बाकी मुसलमानों पे भी गजब हो गया, ये बड़ा जादूगर है, वहां मत जाना, जो जाता है उनके सिर पर भुरकी डाल देते हैं, वो अल्लाह अल्लाह कहने लगता है।
यारो बड़ा जादूगर है,
यारो बड़ा जादूगर है,
हमारा कछु ना चले आ जाओ
भाई, उसके सामने हमारा जोर कहीं चढ़ा, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया, नहीं तो चमड़ी उतर जाती।
इन समय भाव सिंह का
आप ध्यान देना, चारों ने जब मंजूर कर लिया वो लिखा हुआ भाव सिंह के पास चला गया। अब भाव सिंह ने कहा भाई है तो सही, पर पहले आजमा लूं कि इनके अंदर शक्ति भी है या के नहीं है। पहुंचा, स्वामी जी ये लिखकर चारों का आ गया है, बरहक मैं मानता हूं कि आप ही अक्षरातीत हैं और आप ही अल्लाह ताला हैं, पर आखिर इतने बड़े औरंगजेब से मैंने तलवार उठा के लड़ाई करनी है, कुछ ना कुछ शक्ति चमत्कार देख। ठंडा सांस लिया स्वामी जी ने के बस ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं। बहुत समझाया, कहने लगे राजा भाव सिंह तेरा जीव इस मिथ्या जगत का है और मैं बंगाली यंत्रों से तांत्रिक विद्या से कुछ नहीं तुझे दिखा सकता, और तू जो मेरी शक्ति का प्रदर्शन चाहता है तो योग माया का एक किरण भी नूर यदि मैंने तेरे सामने कर दी तो तेरा वहीं पर ही मरण हो जाएगा। कहता स्वामी जी जब आप कृपा करके करेंगे, नहीं समझे, जिद से कहते हैं अजी आप ही कृपा कर दो तो भले हमें मूल मिला हुआ क्यों नहीं नजर आ जाएगा। भाव सिंह ने भी यही कहा था कि महाराज जब आप कृपा कर दोगे, तब उन्होंने देखा इसके मरने के दिन है तो रात को जरा सा योग माया की किरण दिखाई वही मौत हो गई।
वाका हुआ जब,
वाका हो गया मृत्यु हो गई,
तब जोर दिया दजाल।
अब दजाल कौन, अरे बाबा बड़ा वजीर ही तो सिंहासन पे बैठेगा, है दुनिया की बातों के लिए भी दिवाला पिट गया क्या बुद्धि का। कौन, फतेह उल्ला सिंहासन संभालता, उसकी अर्थी मिट्टी जब ठिकाने लगाई आते ही उसको तो पता था हुक्म दे दिया सब सिपाहियों को और फौजा को कि जितने भी शहर के अंदर हिंदू वैरागी हैं उनको पकड़ कर जेल में बंद कर दो।
शोर बड़ा हुआ सब,
बड़ा शोर शराबा हुआ।
फतेह मोहम्मद ने तीन समय,
फतेह मोहम्मद ने उस समय
किया चाकरों को हुक्म,
अपने नौकरों को सिपाहियों और फौजों को हुक्म कर दिया,
ढूंढ काटो वैरागी,
एक एक हिंदू वैरागी को पकड़ लो और जेल में डाल दो।
श्री सैदी उनके पूरे।
अब ध्यान दो, भागा हुआ जान मोहम्मद आया, कहने लगे स्वामी जी फतेहउल्लाह ने ये हुक्म कर दिया क्योंकि अब बादशाह वो है। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, तू ऐसे कर ध्यान के साथ, जिस गली में फतेहउल्लाह का मकान है ना उसके अड़ोस पड़ोस में देख, अगर कोई हवेली खाली है तो तू किराए पे ले आ। भागा गया, हवेलियां खाली थी, बादशाह की जड़ में कौन बैठेगा? तो स्वामी जी ने सब सुंदर साथ को कहा उस हवेली में चल के डेरा लगा दो। स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेके फतेहउल्लाह के पड़ोस में आके बैठ गए और वहां बैठ के कुरान की चर्चा होने लग गई।
रे जाए हवेली पास,
उसकी हवेली में आके बैठ गए और मुल्ला का घर
करते ना कहूं विश्वास
किसी पर, वो तो किसी पर विश्वास ही नहीं मुसलमान करते थे। स्वामी जी वहीं बैठ गए,
लगे कुरान उतारने,
लगे कुरान और टीका उतारने लगे। मुल्ला बुलाकर
लोभ दिखाया तिन्ना,
उसको लोभ दिखाया कि जितना पैसा मांग हम तुम्हें देंगे, तू अपना काम चालू रख।
वो तो राजी गया,
अब पैसे से हर कोई संसार का आदमी राजी हो जाता है।
बैठे लाल दास चरण,
लाल दास और चरण दास बैठ के टीका लिखने लगे।
तीन दिन
वहां रहे,
ए ढूंढे शहर में ठहरा।
अब ध्यान देना, पुलिस और मिलिट्री गली गली, हिंदुओं के घर मंदिर द्वारे सब छांट मारे और बाउंड्री के जो गेट थे बॉर्डर वाले सब बंद कर दिए। एक भी वैरागी उनके हाथ है, क्या भाई शक्ल क्या जाके दिखाएं। तब भड़कल एक दरवाजा था, गेट का नाम जैसे कश्मीरी गेट अजमेरी गेट है ना, तो औरंगाबाद में भड़कल गेट था, वही जाने का रास्ता था। वहां जाके सिपाहियों ने पूछा, अरे भाई वो वैरागी, कहने लगे भाई ये बताओ सिपाही हो है? कोई सुई तो नहीं थी? तीन दिन हो गए तुमने एक एक घर गली मंदिर सब ढूंढ मारा है, अगर होता तो सैकड़ों थे, क्या एक भी तुम्हारे हाथ ना था? जब राजा भाव सिंह मरा था ना उसी रात वो चले गए थे, यहाँ थोड़े वो वैरागी बैठे हैं।
भवानी भट्ट मिला,
अब भवानी भट्ट किसी काम के कारण से गया हुआ, उसको सिपाहियों ने देख लिया, उसने देखा कि इस गली आ रहे हैं, चकमा दिया दीवार और लंगी, अब तीसरी हवेली में जाके स्वामी जी के पास पहुंच गए।
किया दिन पर जोर,
उसको पकड़ने, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, फिर क्या होता है,
वरियाए के भाग के छूट,
वरियाए के मतलब चकमा दे के छूट गया।
ए जो भट्ट भवानी,
ए भवानी भट्ट जो था,
हमें दिखाओ वैरागी,
और आवाज देते अरे लो 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 इनको पकड़ो तो वैरागी हाथ में आ जाएंगे,
हम ढूंढ सके अपनी,
हम ढूंढ सके।
तब भड़कल दरवाजे,
भड़कल दरवाजे के
लोगों दिया जवाब,
लोगों ने जवाब दिया बाबा क्यों पागल हुए, फिर तो चले गए थे
वैरागी, तो जात रहे
वो तो चले गए भाई,
तुम जिन भटको इन
भटको मत, अपना दिमाग मत खराब करो।
जान मोहम्मद आया,
अब शहर में जो कर्फ्यू पर वो तो शांत हो गया कि वैरागी चले गए। अब जान मोहम्मद आया कि स्वामी जी का पता सोच तो निकालू। जब आया तो देखा और पूछा भाई स्वामी जी कहाँ है? जाऊंगा अंदर कुरान पढ़ रहे हैं,
फतेहउल्लाह के घर,
फतेहउल्लाह के घर पर कब्र साथ में ही,
वैरागी देखे
वहाँ सुंदर साथ को देखा,
पूछी श्री जी की खबर,
पूछा भाई स्वामी जी कहाँ हैं?
श्री साहब जी बैठे
हैं, कहने लगे बैठे हैं अंदर जा, देख चर्चा कर रहे हैं, सुन ले
इस हवेली में,
इसी हवेली में,
ये तो ठोर दजाल की,
अरे भाई हद हो गई है स्वामी जी की, ये दजाल फतेहउल्लाह पड़ोस में है, अगर उसको पता चल गया तो बस सारा कल्याण हो जाएगा,
तुम डरत नहीं इनसे।
अब आए कह स्वामी जी आपको जरा भी नहीं डर लगता क्या इनसे?
इनके आदमी तुमको,
इनके आदमियों को चार दिन हो गए ढूंढते ढूंढते,
ढूंढल फिरे सब
सब जगह, उसने खोज माया सारे शहर को,
ए मोहल्ला फतेहउल्लाह,
और ये फतेहउल्लाह का मोहल्ला है, साथ वाली कोठी उसी की है,
ए लड़ेगा तुम
अगर पता चल गया तो बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी।
सिताब निकलो यहाँ से।
अब कृपा करके यहाँ से जल्दी आज रात को आप चले जाओ, और मैं सारी व्यवस्था कर दी है, कोई अब आपको रोकेगा नहीं।
मोह दिखाओ श्री जी साहब।
तब वो श्री जी साहब जी से आके मिला,
साथ ले आए कदमों,
सब सुंदर था लेके आया के ये है स्वामी जी, कदमों आया,
हकीकत कही,
सारी उसने हकीकत कही।
जब तक लगा दिन डूबने,
स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई, बंद कर दिया कुरान का लिखना, और मोमनों को कहा भाई तैयार हो जाओ, और रात को 10-11 बजे निकल चले। वह रात को सब सुंदर साथ शुक्र शुक्र करते बोलो वहां से निकले। भूल गई पहचान, जरा मुसीबत आई ईमान खत्म। चल रहे हैं पैदल, एक दूसरे में फुसफुस कर रहे, बात ये है भाई, या तो ये अक्षरातीत नहीं है, और या फिर हमारी आत्मा ही परमधाम की सौरा सूरत से निकले हैं, एक दिन भी चैन से बीता नहीं। दिल हरिद्वार थोड़ा सा आनंद आया तो दिल्ली में खलड़ी उतरवा के हमारी नकद रख दी, उदयपुर आए तो वहां से जो अच्छा कुछ कपड़ा वपड़ा भी था उतार के बाबा जी भिखारी बना के रख दिया। वहां तो खाली कपड़े ही पहनाए थे, मंदसौर आए तो 8 महीने, बताओ कोई खानदान रहा, परिवार रहा, क्या जीतते जी हमें कोई चाहेगा दुनिया में के प्राणनाथ जी के पीछे लग के भिखारी बन के धर्म खो दिया, बड़ों की नाक काट दी। दूसरा कहता है यार ज्यादा बातें के हैं, जैसे हम जीव हैं वैसे ये हैं, थोड़ी इसने जो श्लोक प्रोक अटरम पटरम याद कर रखा, मैं तो अक्षरातीत मानता नहीं। कहने लगे फिर बताओ, एक उधर मारते हैं फिर उज्जैन लाके जरा 10-12 दिन खूब हलवे पूरे भंडारे खिला दिए, ठीक है भाई चलो। अब आए औरंगाबाद तो बड़े मुश्किल से कोई अपना नसीब था, भाग था के बच के जान छूट गई, वरना मर जाते, टुकड़े कर देते सारे मुसलमान। अब ये बात बढ़ते 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 पैदल चल रहे हैं, और बातें होती होती घुसबुस घुसबुस ऐसी बातों में मददगार सारे, हाँ यार बात तो ठीक है, हमारे घर भी तो मुसीबतें मुसीबतें, ये के राज्य महाराज की मेहर हमारे ऊपर नहीं है, ये माया बड़ी जल्दी असर कर देती, चर्चा 100 साल सुनते रहो माया का तरह झटका लगा, बस राज्य की मेहर है ही नहीं। अब ये बात है, स्वामी जी भी पैदल चल रहे हैं, अगर कोई कान बंद तो नहीं, समझ आ गई जो बार बार सुन रहा, भाई मैं तो अक्षरातीत मानता हूं, तो मानना है तो मान, अरे संसार के देवी देवता होते हैं, इतनी मेहर करके समसीबते टाल देते हैं, और अक्षरातीत के चरणों में आने का फायदा क्या, खलड़ियां उतर रही हैं, भीख मांग रहे हैं, कान फड़वा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इससे तो हम घरों में ही अच्छे थे।
बुलाए जाए चरणदास को,
अब चरणदास को बुलाया,
तफसीर छोड़ी तीन ठोर,
वहां पर तफसीर हुसैनी लिखनी वगैरह बंद कर दी,
7 कोस चले गए,
रात तो रात कितने आ गए, 7 कोस निकल आए बाहर,
बेभाव सिंह लश्कर बोर।
अब जब सुबह हुई तब भाव सिंह के लश्कर को पता चला कि वो तो यहीं पर बैठे हुए थे, अब कहाँ ढूंढने जाते,
कहाँ
से चल करके
मिला राह में भीमसेन,
भीमसेन मिला,
इनको ले आए बुढ़ानपुर।
अब भीमसेन स्वामी जी को सब सुंदर साथ को लेके कहाँ गए, बुढ़ानपुर,
कई बीतक सब
सारी बीतक उसे समझाई,
मैं आया तुम्हारे दीदार,
कहने लगे स्वामी जी मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया हूँ,
कोई निरा कदम
और कोई दिन रहा, चलो
तीन से सवाल लिखाए कुरान के,
आप ध्यान देना, स्वामी जी अभी देख रहे हैं सुंदर साथ का, उससे कुरान के 6 सवाल लिखाए फतेहुल्लाह के ऊपर, अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला यहूदियों के घर आएंगे, वो यहूदी कौन है, और क्या लिखा है कि अल्लाह ताला निसारों की जमात में आएंगे, वो निसार कौन है, और क्या लिखा है कि वो नाजी फिरका एक होगा उसमें अल्लाह ताला और उनकी आत्माएं होंगी, वो कहाँ पर हैं, कौन है। इस तरह 6 सवाल करके लिखे कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब ना दो तो तुम काफर हो, क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह की पहचान कराने के लिए दुनिया का कोई भी काम करना नहीं चाहिए, उसको छोड़कर वो काम जो करेगा वही नाजी फिरका है, और अगर दुनिया के काम में लगता है तो वो काफर है। इस तरह से लिख के स्वामी जी ने भेजा। कौन जवाब देता, किसी को पता हो ना कि वो यहूदी कौन है और वो निसारों की जमात कौन है और वो नाजी फिरका कौन है। कुछ भी उत्तर, 5-6 जो काजी थे बड़े उनको चिट्ठियां लिखी,
ले जाओ मलूक चंद तुम्बा,
मलूक चंद को भेजा, ले जाओ,
भेजी औरंगाबाद,
औरंगाबाद भेजी चिट्ठियां,
फतवल्ला
के ऊपर,
एक
हिदायतुल्ला काजी जो था उस पर, एक दीवान जो था उसके लिए,
3 जिल्दे तीनों पर,
3 जिल्दे तीनों के ऊपर,
और लिखी हकीकत,
और सारी हकीकत लिखी माँ मेहंदी के आने की, जो कुरान में बातें लिखी थी,
रुका दलेल खान पर,
दलेल खान पे भी रुका भेजा,
दही हकीकत क्यामत,
सारी क्यामत के सातों निशान का भी विवरण लिखा,
वीर जी पठवाए औरंगाबाद,
वीर जी भाई को भेजा औरंगाबाद,
शेख बदल लाल खान,
शेख बदल और लाल खान,
इन्हें अकोट से विदा किए,
इन्हें आकूर से भेजा,
क्यों होए पहचान,
ताकि किसी तरह इसको पहचान हो जाए।
श्री मामत कहे मोमिनो,
आप स्वामी श्री प्राणा जी कहते हैं सुंदर साथ जी,
ए औरंगाबाद की बीतक,
ए की बीतक, जहाँ के कष्ट देख के मोमिनों का ईमान गया,
अब आकोट की कहो,
अब आकोट हो गया ना वो काम। अब उसके बाद स्वामी जी ने कहा भाई इनको साथ लेके तो सारा काम ही करना, जब इनका ही ईमान नहीं रहा तो काय की चर्चा और काय की जागनी। तब स्वामी जी कहते हैं भाई तुम सब की राय मुझे पसंद है, तुम्हें पता है मैं तो मेरा ठाकुर, और केशव ठाकुर के परिवार में मैंने जन्म लिया था, मेरे गुरु देवचंद जी हैं जो आज कृष्ण प्रणामी लिए फिर रहे, वहाँ दिल में आ गई मैं चल पड़ा, तुमने मेरा साथ दे दिया, और मैं अक्षातीत बिल्कुल नहीं और ना ही तुम्हारे अंदर परम धाम की, बस सवेरे जरा उठेंगे फिर मेरी एक बात का जवाब दे देना, फिर तुम अपने घर और मैं अपने ठिकाने चला जाऊंगा। ये बात को लेके सब सो गए। अब प्रातः हुआ तो स्वामी जी कहेंगे कि भाई ईमान से ना गिरना, तुम जीव सृष्टि हो मैं भी जीव हूँ, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब सुंदर शाह जी रात हो गई है, तुम भी प्रसाद लो लंगर लेके घर जाओ, कल यही सोच के आना है कि हम परम धाम की आत्माएं नहीं हैं, हम कोरे जीव, क्योंकि मिनट मिनट में जो घर वालों की झिड़कें संसार की मुसीबतें आनी है और हमने रो रो के स्टेन मत्थे लेना है तो फायदा क्या, जाके देवी का पूजन करो। मैं कह रहा हूं उम्र ना गुआ, यहाँ सौदा आशिकी का है और सर के होते हैं सौदे, ये देवी भवानी को खुश कर लिया, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, वो ढोंग यहाँ नहीं, कदम कदम पे मरता जा, प्राणनाथ जी कहता जा, ये वो रास्ता है, हर कदम के ऊपर दूसरी मौत का वार फिर खड़ा होगा, इतना ईमान दृढ़ हो तो कदम आगे रखो, नहीं तो हनुमान की भक्ति रुद्र की भक्ति सारे देवी देवता हैं, जिसकी मर्जी मूर्तियां बनाओ, खुद भगवानों को बनाओ, पत्थरों के घर रखो पूजा। मोमिन जिनको कहा जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मरेगा कौन? जिनका ईमान, जिनका ईमान ही नहीं है। गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, वो क्या ईमान लाएगा, क्या स्वामी जी के स्वरूप की पहचान करेगा, टक्कर टक्कर करेगा राज्य का, इसको कैसे मिल सकता है। वाणी सुन ली, चपड़ चपड़ बोलते फिरते, इश्क कोई गाजर बोली है। पहले अपने को तो तोल, क्या मैं इस काबिल हो गया हूँ, क्या मेरे अंदर अक्षातीत का इश्क आ गया है। तो यदि इश्क आ गया है तो आशक कभी होंठों को खोलता ही नहीं, वो आशक है। सुंदर साहब जी, वो इश्क बड़ी दूर है। ये संसार के नरकीय जीवों की तरह से गलियों में सीटें बजाना ही करना, लड़कियों ने ऊपर से दिखना, ये इश्क नहीं, ये नरक भोगना है। उस इश्क की तुलना यहाँ ना करो। वो तो वाणी आ गई तो ये शब्द सुनने को तुम्हें मिल गए। जरा अपने काबल बनाओ, अपनी रह। पहले दिन कहा था ये संसार का ज्ञान नहीं है, चलो राम कथा हो रही है, चलो भागवत कथा हो रही है, यहाँ मौत की कथा हो रही है। एक बार मरना है, फिर कभी भी जन्मना और मरना, वो मरना नहीं, अपनी ख्वाहिशों को, इंद्रियों को, अहंकार को, गुमान को, मैं खुदी को खत्म करना है, फिर जाके स्वामी जी के स्वरूप की पहचान और यकीन आना शुरू होता है। ये विषय अब कल सारे शंसे दिल में इकट्ठे कर लेना आज, और कहना भाई हम तो जीव हैं, एक प्रश्न तुम्हारे से पूछूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओ वाणी का ही प्रश्न स्वामी जी ने उन मोमनों के ऊपर किया था, और वही प्रश्न कल होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। चलो भाई
श्री महामत के मोमिनो,
श्री महामत के मोमिनो,
औरंगाबाद की बीतक,
औरंगाबाद की बीतक, कोट की कहूं, जो भी तक बुजरक, जो भी प्यारे सुंदर साहब जी, कल शुक्रवार है, आकोट की भी तक हो जाएगी, परसों शनिवार है, रामनगर की भी तक होगी, इतवार को जो दिन में बीतक होगी वो छत्रसाल जी की और स्वामी जी का मिलाप होगा, और प्रथा के हिसाब से मिलाप के ऊपर सुहागिन का अपने प्रीतम से मिलाप होता है तो नारियल बधाए जाते हैं। नियम ने जिसकी इच्छा हो वो आज चरण सिंह जी को प्रसाद लेते हुए या रोटी खाते हुए अपना नाम लिखवा देना, इकट्ठे नारियल, हरि ओम जी सब्जी मंडी में काम करते हैं, हमें ला के दे देंगे, और वही यदि आप रिटेल में खरीदोगे तो 9-10 में खरीदोगे, आपके भले के लिए है। और जितना वो उसका मैंने पूछा था, कहने लगे जी 7-8 के बीच में थोक में मिल जाएंगे, तो उसी हिसाब से अगर आप पहले एडवांस पैसा दो तब मर्जी, नहीं तो मिलेगा तब जब आप पहले पैसे उसके दे दे, सीधी सादी बात है। और जो निजी लाना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अपना निजी द्वार को नारियल ले, और जिसकी इच्छा ना हो नारियल तोड़ने तो कोई नियम बंधन नहीं है कि भाई जरूर नारियल तोड़ना है। उस दिन महाराजा छत्रसाल जी के घर रसोई होगी, उसके लिए भी नीचे ही मालपुरों की व्यवस्था कर, राजा के घर सोई है ना, मालपुरों की व्यवस्था कर दी जाएगी, भोग भी उस दिन जो है यहीं से लगेगा, कोई किसी प्रकार का कष्ट आपको नहीं दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ।